हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा फर्श पर घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रही थी, जैसे अभी भी बच्चे की मौजूदगी महसूस कर रही हो। वेदांत उसके पास घुटनों पर बैठ गया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ विहा पर टिकी थीं। वेदांत ने धीरे से विहा के कंधे पर हाथ रखा। टोमेटो, प्लीज शांत हो जाओ, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। विहा ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज चिल्लाहट में बदल गई। तुम हो ना, तो फिर मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचा पाए? तुम कहाँ थे जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी? मीटिंग में, बिजनेस में? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था घर पर रहो, लेकिन तुम्हें तो कंपनी, मीटिंग्स सब ज्यादा जरूरी लगते हैं। वेदांत का चेहरा और सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस विहा की तरफ देखता रहा। विहा ने फिर से रोते हुए कहा, मुझे लगता था हमारा बच्चा आएगा, हम तीनों खुश रहेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मैं मां नहीं बन पाई, मैं फेल हो गई। वेदांत ने अब हिम्मत करके विहा को अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार विहा ने विरोध नहीं किया, वो बस उसके सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वेदांत ने उसके बाल सहलाए, पीठ थपथपाई, उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। टोमेटो, तुम फेल नहीं हुई हो। वेदांत आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला और निवेदिता धीमे कदमों से अंदर आईं। बाकी सब लोग बाहर ही बैठ गए थे, तो वहीं अनंत रवि का इलाज करवा रहा था। निवेदिता ने जैसे ही अपने दोनों बच्चों को ऐसे रोते हुए देखा, पल भर में उसका दिल टूट गया और उसके दिल में जैसे कांच के टुकड़े चुभने लगे हों। उसने अपने आंसुओं को रोका और फिर आहिस्ता से उन दोनों के पास बैठकर विहा का सर सहलाते हुए बोली, मेरे बच्चे ऐसे नहीं रोते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विहा ने आहिस्ता से वेदांत के सीने से सर निकालकर निवेदिता की तरफ देखा, जो अब मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और खुद को बहुत ज्यादा मजबूत दिखाना चाहती थी। विहा निवेदिता के गले लगते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझे लगा था कि मैं आपको दादी माँ बना दूंगी और हम सब लोग बहुत खुश रहेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। निवेदिता ने जैसे ही आंखें बंद की, उसकी आंख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गया। उसके हाथ धीरे धीरे विहा का सर सहला रहे थे। फिर उसने आंखें खोलकर एक नजर वेदांत को देखा और फिर उसने दूसरे हाथ से वेदांत का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम भी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उसके लिए रो रहे हैं जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, और उन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जो फिलहाल इस दुनिया में हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। वेदांत ने धीरे से पलकें झपकाई और फिर एक नजर विहा को देखकर वहां से उठकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने देखा कि उसके फोन पर जूली के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। उन्हें देखकर वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर जूली को कॉल बैक किया। उधर ऑफिस में जूली बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने जैसे ही देखा कि वेदांत उसे कॉल कर रहा है, उसने तुरंत ही कॉल उठाते हुए कहा, सर आप लोग बिना बताए ऐसे कहाँ चले गए? मैं बहुत परेशान हो गई थी, ना आपका कॉल लग रहा है ना अनाई मैडम का। आप सब लोग ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? जूली के नॉनस्टॉप सवालों पर वेदांत ने ब्रेक लगाते हुए कहा, हाँ जूली, सब कुछ ठीक है, बस हमने अपना बच्चा खो दिया है, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। हो सके तो ऑफिस वर्क संभाल लेना, और अगर तुमसे ना हो तो तुम भी छुट्टी ले सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो काम अकेले करने लायक है। जिस एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए सबको दे दो, मैं भी ब्रेक लेना चाहता हूँ। वेदांत की बात सुनकर जूली बिल्कुल शांत पड़ गई थी। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, साथ ही साथ उसे बुरा भी लग रहा था कि कल कैसे उसने वेदांत से बोल दिया था कि वो काम नहीं करेगी अगर वेदांत ऐसे ही काम को नेग्लेक्ट करता रहेगा। उसे नहीं पता था उसके बोले गए शब्द वेदांत को इतना ज्यादा इफेक्ट भी कर देंगे। उसने जल्दी से कहा, डोंट वरी सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप चिंता मत करिए, आपको जितने दिनों की छुट्टी चाहिए आप उतने दिन छुट्टी ले सकते हैं, पर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में ऑफिस को एकदम से बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। आप अपने हस्बैंड की जॉब करिए और मैं अपनी असिस्टेंट की जॉब करती हूँ। वेदांत ने जूली की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। तो वहीं जूली भी अब काफी परेशान हो गई थी, इस वजह से नहीं कि ऑफिस का काम रुक गया है, बल्कि इस वजह से क्योंकि वेदांत कितना ज्यादा परेशान है। एक बच्चा खोना पिता के लिए भी उतना ही दर्दनाक होता है जितना माँ के लिए होता है, पर लड़के खुद को इस तरीके से मजबूत दिखाते हैं जैसे उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वेदांत के साथ काम करते करते जूली को वेदांत बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे वेदांत की हर छोटी बड़ी चीजों से फर्क पड़ने लगा था। तो वहीं वेदांत के पास अब सूक्ष्मों के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। वो धीमे कदमों से हॉस्पिटल से बाहर चला गया। उसे खुद नहीं पता कि वो कहां चला जा रहा था, पर उसे विहा के बोले गए शब्द याद आ रहे थे जिनमें वो बोल रही थी कि उसे वेदांत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो नहीं चाहती है वेदांत उसके आसपास रहे, और वेदांत को अपने आसपास देखकर उसे और ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। उसे सांस नहीं आती और घुटन होने लगती है। इन सबको याद कर करके वेदांत के गले में कांटे चुभने लगे थे। उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, पर वो कहां जाए। उसकी गलती दोस्त अनाई भी अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसने उसे गले लगाने तक से मना कर दिया था, तो वो उसके आंसू कैसे पहुंच लेगी। वेदांत फिलहाल खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे कोई चाहिए था जिसके सामने वो रोकर अपना दर्द भी बता सके कि उसे भी उतनी तकलीफ हो रही है अपना बच्चा खोकर जितना कि उसकी टोमेटो को हो रही है, और वो इतना मजबूत नहीं है जितना वो बाहर से दिखता है। तो वहीं जोली ने पता कर लिया था कि विहा कौन से अस्पताल में एडमिट है। वो जल्द से जल्द उन लोगों से मिलना चाहती थी, इसलिए वो कार ड्राइव करके सिटी हॉस्पिटल ही आ रही थी। रास्ते में ही उसे वेदांत मिल गया जो बेसुध सा बस चला जा रहा था। जूली ने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और फिर दौड़ते हुए वेदांत के पास जाकर बोली, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये इतनी सारी चोट कैसे लगी है आपको। दौड़ने की वजह से जूली की सांस पूरी तरह उखड़ रही थी और वो लगभग हांफते हुए वेदांत से सवाल कर रही थी। वेदांत ने जैसे ही जानी पहचानी आवाज सुनी, उसने अपनी भीगी पलकों को उठाकर सामने की तरफ देखा। जूली को देखकर उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रही हो। जूली ने जल्दी से उसके पास आकर उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, मैं तो आपसे ही मिलने आ रही थी, आप बताइए ना आपको ये चोट कैसे लगी है और आप ऐसे बिना गाड़ी कहां जा रहे हो। चलिए मैं गाड़ी लेकर आई हूं, आपको कहां जाना है मैं छोड़ दूंगी। वेदांत ने उसके हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहा, अगर मुझे डेस्टिनेशन ही पता होती तो मैं बस या ट्रेन से ही चला जाता। मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, पर फिलहाल यहाँ से जाना है, बस थोड़ी देर की शांति चाहिए। तुम भी प्लीज जाओ यहाँ से। जूली वेदांत को तकलीफ में नहीं देख पा रही थी। उसने फिर से वेदांत का हाथ पकड़कर जिद करते हुए कहा, प्लीज जूली ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं चाहता तुम्हें पता चले कि मैं कितना कमजोर इंसान हूँ और मुझे जब तकलीफ होती है तो मैं कैसा बर्ताव करता हूँ। मैं सबकी नजरों में सिर्फ एक मजाक बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है जूली।
जूली ने जल्दी से वेदांत को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं है, अगर अपनी तकलीफ किसी को दिखाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपका मजाक ही उड़ाएगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, चलिए आप मेरे साथ। इतना बोलकर अब जूली वेदांत का हाथ पकड़े उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गई। उसने वेदांत को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई।